डॉक्टर राय कोगना को हाल ही में उच्चतम ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक संस्थान कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी साइरो से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है।
I'm now delighted to present the third recipient for this year's Medal for Lifetime Achievement, which has been awarded to Rai Kukana for pioneering new areas of science which provide the foundation of CSIRO's research platforms on emerging chemicals of concern.
अपने काम और इस अवार्ड को लेकर डॉक्टर कुकना कहते हैं,
प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकें, इस बारे में लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, तो ये जो अवार्ड मुझे मिला है वो मेरा 30 साल के योगदान को देखते हुए, और योगदान सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पे जो शोध हुआ मेरी तरफ से और जो हम लोगों ने मिलकर यहाँ टीम थे, तो उसका क्या प्रभाव रहा, कैसे उस पर उन्होंने आगे शोध बढ़ाया और पर्यावरण के बचाव के लिए, उसकी रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कैसे उस कार्य को इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, उसके एवज में उसको ध्यान में रखते हुए CSIR ने ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है।
डॉक्टर कुकना ये विशेष सम्मान पाकर खुश हैं। वे बताते हैं कि इस लंबे सफर की शुरुआत 35 साल पहले तब हुई जब वे भारत से एक छात्र के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया PhD करने आए। 80 के उतरते दशक में जब विश्व में कीटनाशकों की वजह से हरित क्रांति का आगाज हुआ, अमेरिका की एक पत्रकार रेचल कार्सन ने महसूस किया कि स्प्रिंग का मौसम असाधारण रूप से शांत हो चला है, पक्षियों की आवाज ही नहीं सुनाई देती। उन्होंने जब खोज की तो DDT नाम के कीटनाशक के पर्यावरण पर, खासकर पक्षियों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है मालूम चल सका। उन्होंने इस विषय पर एक किताब लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग डॉक्टर कुकना की प्रेरणा स्रोत बनी।
मैं तो एक कृषक परिवार से हूँ, तो अपने हाथों से DDT हम खेत में छिड़कते थे, तो DDT को लेके एक पुस्तक आई थी और उसमें मुख्य बात यही थी कि ये जो कीटनाशक थे उनको लेके चिंता जाहिर की थी, और साइलेंट स्प्रिंग का मतलब ये था कि उसका असर खास तौर पर पक्षियों पे और जीव जंतुओं पे इस तरह से पड़ रहा था, पर्यावरण पर इतना गहरा असर हो सकता है कि उसमें हम शायद पक्षियों का कलरव न सुन पाए, तो ये बड़ी गंभीर स्थिति थी। तो उस पुस्तक को लेके भी एक नई एक रुचि पैदा हुई पर्यावरण के संदर्भ से।
अपने PhD के विषय को लेकर बहुत सोचने के बाद डॉक्टर कुकना ने ये तय किया कि
बाद में कुल मिला के बात ये निकली कि कीटनाशक का नाशकों पर का पर्यावरण पर प्रभाव एक ऐसा विषय है जिस पे आज तक बहुत कुछ काम नहीं हुआ है और एक नया काम होगा और इसे हमें शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से मैं पर्यावरण के क्षेत्र में और खास तौर पर केमिकल्स से जुड़ी हुई, रासायनिक पदार्थों से जुड़ी हुई शोध से मेरा लगाव उससे पैदा हुआ।
अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में वे कहते हैं,
मैं जैसे मैंने पहले कहा मैं कृषि परिवार से हूँ, गांव से, तो मेरा जन्म एक गांव में हुआ। मेरे माता पिता दोनों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, स्कूली शिक्षा स्कूल में भी नहीं गए थे, और मेरे पिताजी की पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लेकिन ये जमाना है करीबन अंग्रेजों के वक्त का जमाना था, हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से, हिसार जिले से, और वहाँ अकाल अक्सर पड़ते थे हर कुछ सालों के बाद, तो उस अकाल का प्रभाव इतना गहरा होता था कि गांव छोड़ने पड़ते थे। तो मेरे पिताजी को और मेरे परिवार को उस वक्त उनके बचपन के दिनों में गांव छोड़ना पड़ा 3 साल तक अकाल की वजह से। तो गांव एक छोटा सा स्कूल खुला था जब वो स्कूल जाने लगे थे, लेकिन अकाल की वजह से वो स्कूल बंद हो गया, और जब लौटे तो स्कूल भी नहीं था जाने के लिए। तो उन मन में जो इच्छा थी पढ़ने की वो रह गई अधूरी, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों के माध्यम से उस सपने को पूरा किया, और खेत में काम करते हुए भी उनका ये दृढ़ निश्चय और विश्वास था और ये इच्छा थी कि बच्चे पढ़ पाएं।
डॉक्टर कुकना कहते हैं कि इस लंबे समय में जिस चीज ने उनके शोध को जोड़कर रखा वो था केमिकल्स का यानी रसायनों का रोज बदलता संसार। यही रोज बदलता ज्ञान एक समस्या भी है।
तो आप देखिए 2014 से पहले के 50 साल में जितने रासायनिक पदार्थ हमने पैदा किए, सिंथेसाइज किए, जिनकी इजाद की और जो रजिस्टर किए, वो उतने 2014 में हुए और उसके बाद बढ़ते गए। तो मैं आपको ये बताऊं वृशाली के लगभग जब तक हम अपना ये बातचीत खत्म करेंगे अब तक हमारा जो रजिस्टर है केमिकल्स का उसमें लगभग 500 केमिकल नए जुड़ चुके होंगे जिनका अभी प्रयोग में आएंगे, कौन से पदार्थों में आएंगे, कहाँ उनका इस्तेमाल होगा ये अलग बात है, और केमिकल्स का जो रजिस्टर है उसमें दर्ज हो चुके होंगे अगले आधा घंटा पौना घंटा में 500 केमिकल। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल्स का जो चारों तरफ से हमारा घिरा होना ये बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं रहा है। एक ये चैलेंज रहा है, दूसरा चैलेंज जिसके साथ एक मैंने नोट किया है कि अक्सर जब हम केमिकल्स को उनके पर्यावरण पर या जीव जंतुओं बल्कि मानव के अपने स्वास्थ्य पर असर को देखते हैं तो वो अक्सर काफी देर के बाद पता चलता है।
डॉक्टर कुकना विश्व की शीर्ष रासायनिक शोध संस्था IUPAC के अध्यक्ष भी रहे। इस बड़े अनुभवों और इन चुनौतियों के सामने डॉक्टर कुकना आने वाली पीढ़ियों से बड़ी उम्मीद रखते हैं। वे मानते हैं कि आने वाली पीढ़ी ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहारिक ज्ञान के साथ स्टेम क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और ये एक अच्छी बात है।
मैं अगर मुड़ के देखूं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को तब वहां हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज पे और वो उस पे एम्फसिस उस पे ज्यादा फोकस रहता था बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के कि कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा और उसके एग्जांपल दिए जाएं। अब बच्चों को, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अब साइंस अलाइव नाम की एग्जीबिशन में जाते हैं और वो देखते हैं अपने सामने ऐसे एग्जिबिट्स जिनको वो देख के उनको यूं लगता है कि ये तो बड़ा एक्साइटिंग है, ये तो साइंस तो मैजिक जैसा है और उनको यूं साइंस की तरफ रुचि बढ़ती है।
आने वाली पीढ़ी की बात करते हुए डॉक्टर कुकना बीती पीढ़ी को नहीं भूलते। वे कहते हैं वे आज जो कुछ भी हैं अपने माता पिता और पत्नी की बदौलत ही हैं।
मेरा ये जो कुछ साइंस में और खासतौर पर इस मेडल मैंने रिसीव किया तो उस वक्त मेरी वो एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने मेरी धर्म पत्नी बिमला कुकना को खास तौर पे इस बात का उसको डेडिकेट किया, उनको उनके समर्थन सहयोग और पूरा जो साथ था उसके बिना ये संभव नहीं हो सकता था।
डॉक्टर कुकना साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। वे 28 साल की उम्र में जब भारत से ऑस्ट्रेलिया आए थे तो अपने साथ हिंदी की किताबें लाए थे। डॉक्टर कुकना अगले साल सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। 35 साल विज्ञान को समर्पित कर अब वे लेखन की ओर बढ़ना चाहते हैं।
हमारे हिंदी की जो कविताएं उस वक्त पढ़ते थे अच्छी लगती थी, अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं की व्याकरण के बारे में ज्ञान बहुत कम रहा, सीमित रहा और वो अब कोशिश कर रहा हूँ खुद थोड़ा बढ़ाने की, तो उसमें अलग अलग पहलुओं पे कुछ कोशिश कर रहा हूँ आजकल मैं सीखने की। जैसे हम पढ़ते आए हैं आजकल नवगीत के बारे में कुछ सीखा है, कुंडलियां छंद के बारे में सीखा है, छंद मुक्त लिखते रहे हैं, हाइकू एक विधा है जापानीज कविता की तो उसमें भी कुछ सीखा है।
रस खान, सूरदास और बाबा नागार्जुन को नियमित रूप से पढ़ने वाले डॉक्टर कुकना चलते चलते धर्मवीर भारती की कविता डोले का गीत पढ़ते हुए अपनी जीवन यात्रा को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।
अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुवेला, यहाँ अंबुआ तरे रुक एक पल विश्राम लेना, मिलो जब गांव भर से बात कहना बात सुनना, भूल कर मेरा न हरगिज नाम लेना, अगर कोई सखी को जिक्र मेरा छेड़ बैठे हंस में टाल देना बात आंसू थाम लेना।
SBS हिंदी से इस रिपोर्ट को आपके लिए पेश किया है वृशाली जैन ने।